अरमान के जाने के बाद आस्था, जो उस वक्त बाथरूम में थी, रो रही थी, क्योंकि अरमान ने 10 से 15 मिनट के अंदर ही उसके शरीर को बहुत ज्यादा दर्द दिया था। इतना ही नहीं, उसकी गर्दन, छाती, कमर, उसके पेट, हर जगह अरमान के किस करने, काटने और निशान मौजूद थे। आस्था को अपने शरीर में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। जल्दी ही उसने शावर खोलकर उसके नीचे खड़ी हो गई और काफी देर तक रोने धोने के बाद खुद को संभालते हुए बाहर निकली। उसने पहले अपना छोटा सा सिर निकालकर बाहर देखा कि अरमान कमरे में है या नहीं, लेकिन अरमान को कमरे में ना पाकर उसने राहत की सांस ली और फटाफट से अरमान की अलमारी से एक जोड़ी कपड़े ले लिए। हालांकि उसके ज्यादा कपड़े दादाजी ने दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिए थे, लेकिन कुछ कपड़े अभी भी उसी अलमारी में मौजूद थे, तो आस्था ने उनमें से ही एक ब्लैक कलर का फ्रॉक सूट लिया। बाकी कपड़े काफी ज्यादा हैवी कलर के और हैवी कपड़े थे, लेकिन ब्लैक कलर का एक सिंपल सा फ्रॉक सूट आस्था को पसंद आ गया था। फटाफट से उसने उसे पहना और उसके बाद आस्था ने अपनी शक्ल आईने में देखी। ऐसा लगने लगा था मानो आस्था महीनों से बीमार हो। कुछ ही पल में अरमान ने उसकी खूबसूरती का रस निचोड़ लिया था। वो बहुत ज्यादा उदास लग रही थी। उसके चेहरे पर निशान मौजूद थे, उसकी गर्दन पर निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे। आस्था ने दुपट्टे से अपने निशान कवर करने की कोशिश की और साथ ही साथ कुछ फाउंडेशन वगैरह अपने फेस पर अप्लाई किया ताकि वो निशान हल्के हो सके और दिखाई ना दे। आस्था काफी देर तक सोचती रही कि उसके साथ ये क्यों हुआ, आखिरकार अरमान सिंघानिया ने उसके साथ क्या किया। आस्था को उस वक्त बेहद अजीब सा लग रहा था, लेकिन अब पूरे दिन वो उसके कमरे में भी नहीं रह सकती थी। और इससे पहले कि अरमान उस कमरे में आ जाता, आस्था जल्दी उस कमरे से बाहर निकल गई और बाहर निकलकर वो सीधा डॉक्टर रश्मि के कमरे में जाने लगी। वहीं अरमान स्टडी रूम में आ गया था। वहां जाकर उसने देव को देखा और बोला, तुम अभी यहां से बाहर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। देव ने तुरंत उसकी बात मानी और फटाफट से उस कमरे से निकल गया, क्योंकि देव अरमान की बात नहीं टाल सकता था और वैसे भी अरमान की बात टालने की उसमें हिम्मत नहीं थी। लेकिन अरमान के चेहरे को देखकर वो समझ चुका था कि कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ है जो अरमान सर को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। वेल, देव के जाने के बाद अरमान ने खुद से ही सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। आखिरकार ये मुझसे हो गया, उस लड़की के करीब आकर मैं बहक कैसे गया? वो लड़की तो यही चाहती है कि अरमान सिंघानिया उसके साथ फिजिकल हो, मैं कैसे उसकी ओर अट्रैक्ट हो गया, कैसे कैसे? ये सोचते हुए उसने एक घूंसा खींचकर दीवार पर दे मारा। उसे रह रहकर खुद पर ही गुस्सा आ रहा था और बार बार आस्था के करीब जाना, उसे बेहद चूमना, वो उसे याद आने लगा। अरमान का शरीर अभी भी बहुत ज्यादा आस्था की तलब में था, लेकिन उस वक्त अरमान खुद पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, और जब वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया तो इसीलिए वो सीधा जिम रूम की ओर चला गया। हालांकि जिम रूम जाने का ये उसका कोई समय नहीं था, लेकिन उसे खुद को थोड़ी सी तकलीफ देना चाहता था ताकि जो गलती उससे हुई थी वो उसकी सजा खुद को दे सके। वहीं आस्था जल्द ही डॉक्टर रश्मि के कमरे में आ गई, डॉक्टर रश्मि जो कि अस्पताल से आने के बाद थककर सो चुकी थी। आस्था ने कुछ देर उन्हें देखा, लेकिन वो डॉक्टर रश्मि को परेशान नहीं करना चाहती थी। तब आस्था उस कमरे से बाहर निकल गई और वहां जाकर उसने बाहर गार्डन में बैठने का डिसीजन लिया। बाहर गार्डन में बैठकर थोड़ी देर अकेले रहना चाहती थी और सोचना चाहती थी कि उसके साथ क्या हुआ है। वह आस्था गार्डन की ओर चली गई। वहीं अरमान जिम में जाने के बाद खुद को काफी ज्यादा हर्ट करने लगा। हालांकि उसके हाथ में काफी ज्यादा पेन था, लेकिन आस्था के मरहम से उसे आराम भी मिला था। लेकिन अब क्योंकि वो एक बार फिर खुद को तकलीफ दे रहा था, इस वजह से उसके जख्म फिर से हरे होने लगे थे। वहीं सुमित एक अनजान लड़की को शहर के बड़े मशहूर हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद वापस से सिंघानिया मेंशन लौट आया था। इस वक्त उसकी आंखें काफी ज्यादा भारी थीं। वहीं आकाश ने सुमित की आंखों को देख लिया था और वो समझ चुका था कि सुमित कहां से आया है। उस वक्त वो सुमित से कोई सवाल नहीं करना चाहता था, लेकिन साथ ही साथ वो ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि इस वक्त सुमित पर क्या बीत रही है। और सुमित इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करेगा और वो अकेला ही रहना चाहेगा, इसीलिए वो सीधा अपने कमरे में चला गया और जाकर उसने खुद को बंद कर लिया। वहीं आकाश मन ही मन में बोला, न जाने मेरे दोस्त की दुख की घड़ी कब खत्म होगी, कब आएगा उस लड़की को होश। ये सोचते हुए आकाश ने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी ओर आहान और ध्रुव दोनों एक जगह बैठे हुए थे, तो ध्रुव अपने किसी काम से अपने बंगले में गया था और जल्दी ही लौट भी आया था, और आहान कॉलेज ही नहीं गया था क्योंकि अरमान की हालत को लेकर वो काफी ज्यादा परेशान थे। अरमान कल रात कहां गया था, इस बात की खबर उन्हें मिल चुकी थी। तब अचानक आहान के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन को देखकर आहान हैरान हो गया। आहान को हैरान परेशान देखकर ध्रुव बोला, क्या बात है ब्रो? तब आहान ने ध्रुव को अपना फोन दिखाते हुए कहा, आपको याद है ना वो सेल्स गर्ल जिसने आस्था भाभी को मॉल के चेंजिंग रूम में बंद किया था? भाई ने उसका स्केच बनाने के लिए बोला था, जिसके कहने पर उसने ये सब कुछ किया था। उसका वो स्केच रेडी हो गया है, तो ये देखिए। ये लड़की तो मैंने कहीं भी नहीं देखी, पता नहीं कौन है ये लड़की। तब ध्रुव भी वो स्केचेस देखने लगा और बोला, हाँ मुझे भी ये लड़की समझ में नहीं आ रही, मैंने भी इसे आज तक नहीं देखा। तब तक देव ने भी वो स्केच देख लिया। कहीं ना कहीं उसे उसकी झलक कुछ जानी पहचानी लगी थी, लेकिन अगले पल देव ने भी कह दिया कि मैंने भी ये चेहरा पहली बार देखा है। तभी ध्रुव बोला, मुझे लगता है कि हमें आस्था भाभी को दिखाना चाहिए, हो सकता है आस्था भाभी इसे जानती हो। अब ध्रुव की बात सुनकर देव और आहान भी उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं और आहान बोला, शायद तू ठीक कह रहा है, चल चलकर ये स्क्रैचेस आस्था भाभी को दिखाते हैं, देव तू भी चल। ऐसा कहकर देव, ध्रुव और आहान तीनों आस्था से मिलने के लिए जाने लगे थे। वहीं अरमान ने 20 से 25 मिनट तक खुद को तकलीफ दी थी, लेकिन उसके हाथ में काफी पेन था और उस पेन को अब आस्था के बने हुए मरहम की जरूरत थी। लेकिन फिलहाल अरमान अपने कमरे में जाने लगा। जैसे ही वो वहां गया, उसने देखा कि आस्था पूरे कमरे में कहीं नहीं थी। अरमान ने बाथरूम भी चेक किया। बाथरूम में अरमान को जल्दी ही आस्था की फटी हुई कुर्ती दिखाई दी, जिस कुर्ती को अरमान ने थोड़ी देर पहले चीर कर फाड़ दिया था, वो कुर्ती वहीं बाथरूम के फर्श पर पड़ी हुई थी। एक पल को उस कुर्ती को देखकर एक बार फिर अरमान के ख्यालों में वो सारा सीन आ गया जो अभी थोड़ी देर पहले उसने आस्था के साथ किया था। अगले ही पल वो बाथरूम से बाहर निकल गया, क्योंकि वो आस्था से मिलकर बात करना चाहता था। क्योंकि आस्था जिस तरह से नासमझी में बातें करती थी, वो सोचने लगा कहीं वो दादाजी को फ्लो फ्लो में कुछ बता ना दे। अगर उसने दादाजी को उसके बारे में कुछ बता दिया तो ना जाने दादाजी के सामने उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। कहीं ना कहीं उस वक्त अरमान ये सोच रहा था और आस्था से मिलकर वो उसे डराना और धमकाना चाहता था। वहीं ध्रुव और आहान आस्था को ढूंढते हुए अरमान के कमरे तक आ गए थे। अब जैसे ही उन्होंने कमरे पर नॉक किया, अरमान को लगा शायद आस्था है। तब उसने बिना पीछे मुड़े ही कहा, यस कमिंग। तब जल्दी वो तीनों अंदर आ गए। तभी अरमान ने बिना पीछे मुड़े बोला, मुझे पता था तुम लौटकर यहीं आओगी, और वैसे भी अरमान सिंघानिया से बचकर जाना नामुमकिन है। अब जैसे ही अरमान ने यह कहा, ध्रुव आहान और देव सब दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी ध्रुव बोला,
भाई किससे बात कर रहे हैं आप? अब जैसे ही अरमान ने आस्था की जगह ध्रुव की आवाज़ सुनी, अरमान हैरान हो गया और उनकी ओर पीछे पलटकर सबको देखने लगा और रूड वॉइस में बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अगले ही पल आहान बोला, भाई आप किसके बारे में बात कर रहे थे? किसे आना होगा आखिर आपके पास? तभी अरमान बात बदलते हुए बोला, तुम कब से मुझसे सवाल करने लगे? आहान अभी फ़िलहाल तुम ये बताओ, तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? अरमान की बात सुनकर जल्दी ही वो फोटो जो कि उसी सेल्स गर्ल ने बनवाई थी, वो फोटो अरमान को दिखा दी गई और बोला गया, भाई आपने जो स्केच आर्टिस्ट से जिस लड़की ने भाभी को हर्ट करने की कोशिश की थी, वो लड़की का स्केच बन गया है और ये वही लड़की का स्केच है। हम ये भाभी को दिखाना चाहते हैं कि कहीं भाभी तो इस लड़की को नहीं जानती है। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, अरमान उसकी ओर सवालिया नजरों से देखने लगा और फिर उन सबसे बोला, तो दिखाओ फिर यहाँ क्या कर रहे हो तुम सब? तभी ध्रुव बोला, क्या भाभी यहाँ इस कमरे में नहीं है? क्योंकि हम तो भाभी को सारी जगह ढूंढ चुके हैं, भाभी हमें नहीं मिली। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, अरमान हैरान होकर बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के रहते भला वो लड़की यहाँ से कहाँ जा सकती है? ढूंढो उसे, कहाँ है वो? ऐसा कहकर अरमान ने उन तीनों को आस्था को ढूंढने के लिए कह दिया। वो तीनों ही हैरान थे कि आखिरकार अरमान इस तरह से आस्था के बारे में क्यों बात कर रहा है और उसे इस तरह से ढूंढने के लिए क्यों कह रहा है, जैसे कि वो बहुत बड़ी क्रिमिनल हो। वहीं अरमान मन ही मन में झल्ला उठा और बोला, तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी आस्था। अरमान सिंघानिया, अगर तुम आज इस घर से चली गई होगी तो तुम देखना कि अरमान सिंघानिया तुम्हारा क्या हाल करता है। कहीं ना कहीं अरमान को यही लग रहा था कि जो हरकत उसने अभी आस्था के साथ की थी, इस बात से गुस्सा होकर आस्था इस घर को छोड़कर चली गई है, तो यही बात उसे गुस्सा दिला रही थी और इसीलिए वो आस्था को अब जल्द से जल्द ढूंढना चाहता था। वहीं आस्था अरमान के खूबसूरत गार्डन में ही थी, लेकिन वो गार्डन के एक ऐसे हिस्से में बैठी थी जहां पर किसी की नजर नहीं पड़ने वाली थी। वो हिस्सा गार्डन के बैक साइड स्विमिंग पूल के पास का था। आस्था स्विमिंग पूल के पास ही बैठी हुई थी और सोच रही थी कि उसके साथ आज ये क्या क्या हुआ है। आस्था के दिल में आया कि सारी बातें वो दादाजी से बता दे कि दादाजी आपका पोता हमें इस तरह से परेशान कर रहा है, लेकिन फिर वो सोचने लगी कि उसे अब किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए और केवल एक दो दिन की बात है और जल्द से जल्द राक्षस खडूस सिंघानिया अगर ठीक हो जाता है उसके बाद तो वो यहाँ से चली ही जाएगी, तो बस कुछ दिन और, जब हम इतने दिन यहाँ पर रह लिए हैं तो दो तीन दिन तक और रहने में क्या हर्ज है। लेकिन तब तक हमें अरमान सिंघानिया से दूर रहना होगा और एक मिनट के लिए भी उसके आसपास नहीं रहना होगा, क्योंकि अगर हम उसके आसपास रहे तो वो अपनी हदें पार कर सकता है। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आस्था को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिलहाल वो खामोशी से अपने बीते दिनों को याद करने लगी, अपने माँ बाप को याद करने लगी और साथ ही साथ अपनी प्यारी सी नानी माँ को याद करने लगी। वहीं अरमान के ऑर्डर देने पर वो तीनों आस्था को हर जगह ढूंढने लगे थे। रश्मि का कमरा, आकाश का, सुमित का, हर जगह हर कमरा उन्होंने देख लिया था। दादाजी का कमरा तक उन्होंने देख लिया था, लेकिन उन्होंने किसी से पूछा नहीं था कि आखिरकार आस्था कहाँ है। वहीं अरमान ने गुस्से से अपने सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने पास बुला लिया था और सबको आस्था के बारे में पूछा, लेकिन सभी गार्ड्स ने एक ही जवाब दिया था कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकला है सर। लेकिन अरमान को रह रहकर यही लग रहा था कि जरूर आस्था घर छोड़कर कहीं चली गई होगी, तो इसीलिए वो गुस्से से सबको बारी बारी से देख रहा था और बोला, अगर वो लड़की मेरी मर्जी के बगैर इस घर से बाहर निकल गई होगी तो तुम सबका इस दुनिया में आज आखिरी दिन होगा। याद रखना, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर वो गुस्से से बारी बारी से हर एक गार्ड्स को घूरने लगा। क्या अरमान आस्था को वक्त रहते ढूंढ पाएगा? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों, साथ ही साथ जरूर पढ़ें एक उदास परी और चिन्ह।